तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आगा मुर्तज़ा साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि हम जैसे मजदूर लोगों को भी उन्होंने एक स्टेज फराहम किया, और वो भी ऐसा पाको पाकिज़ा स्टेज जिससे हम आज आपके सामने सुरखरू हैं। इसके बाद सब जो ब्रादर ने ऐलान किया उसमें थोड़ा सा मैं मतलब तसीह करना चाहूँगा, वो ये कि मेरी अभी तक जो जद्दोजहद रही है उसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो सिर्फ गुलिस्तान सोसाइटी है, और वो गुलिस्तान सोसाइटी स्कीम 33 में वाक़ है, जौहर में नहीं है। दूसरी बात ये कि जो हमारी काविशें रही हैं इस हवाले से वो तकरीबन कोई ये समझ लें कि 7-8 साल का अरसा है इस हवाले से जो काविशें। इस 7-8 साल के अरसे के अंदर जो मसाइल हमारे सामने दरपेश हुए उसकी रोशनी में हमने दीगर अपनी जो शिया आबादियां हैं उनको भी इस हवाले से महसूस किया है कि वहाँ क्या कमी है और क्या होना चाहिए। इस हवाले से जाहिर है कि हमारे पास जो मशहूर किस्म की आबादियां हैं उसमें जाफर तैयार है, अंचोली सोसाइटी है, मोहम्मदी डेरा है, सादात कॉलोनी है डिग रोड की, और जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं वो यही आबादियां हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मोमिनीन ने अपने तौर पे कोशिश की है उसमें उनकी अपनी आबादकारी के बाद की एफर्ट्स हैं, जो कुछ भी हैं उससे पहले की एफर्ट्स मौजूद नहीं हैं वहाँ पर। तो हमारी जो ख्याल है वो ये है कि पहले आबादी को वहाँ आने से पहले उसकी प्लानिंग और उसकी डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है, ताकि उसको इन फूटिंग्स पे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वहाँ पर आके जो लोग आबाद हो वो अपने शरी वज़ाइफ और अपने मामूलात ज़िंदगी को बड़ी आसानी से और खुश असलूबी से अंजाम दे सकें। इस सिलसिले में गुलिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने लिए जो कुछ भी अहदाफ मुकरर किए उसमें यही सारी चीज़ें जो हैं वो पेश निगाह थी। अब क्योंकि गुलिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से आपको थोड़ा सा मैं तारुफ कराता चलूं कि ये हमारी जो सुपर हाईवे है इसके ऊपर तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर के बाद जहाँ पुल आता है वहाँ पर ये सोसाइटी है बंदू खान के बिल्कुल एडजेसेंट, और इसमें हम इस वक्त तकरीबन कोई 20 मकानात जेरे तामीर हैं, और तकरीबन 40 से 45 मकानात के नक्शे जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं, यानी वो भी कुछ अरसे में तामीर हो जाएंगे। काबिले ज़िक्र ये है कि हमारे आगा हैदर साहब और अली मुर्तज़ा जैदी साहब का वहाँ पर मकान तकरीबन ज़ेर तामीर है। उसके बाद हम आपको असल में मसाइल से आगाह करना चाहते हैं जो हमारी वहाँ पर काविशें रहीं, हमारे जो वहाँ मुश्किलात दरपेश रहीं, जो हमें गवर्नमेंट के साथ ज़मीन हासिल करने या ज़मीन को डेवलप करने के अंदर जो मसाइल पेश आए उसमें हम थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे। गुलिस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम आए 1968 के अंदर हुआ, और इसका पहला लेआउट प्लान जो है वो केडीए से मंजूरी के लिए 1972 में जमा कराया गया, जो कि कोऑपरेटिव के कुछ मसाइल की वजह से जाहिर है कि उसमें कुछ डिले हुआ। इस डिले की वजह से वहाँ पर थोड़े दिन बाद स्कीम 33 अनाउंस हो गई। स्कीम 33 जब अनाउंस हुई तो उसमें ये जो सुपर हाईवे है इसका بننا بھی شامل تھا. اس جو ہماری زمین تھی وہ اصل میں مین سپر ہائی وے پہ تھی. تو جب وہ پروجیکٹ سامنے آیا تو ہماری زمین گورنمنٹ نے واپس لے لی اور اس کے بدلے دوسری زمین کا انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہم آپ کو دیں گے. اس تمام پروسیجر کے اندر ہمیں تقریباً 1997 تک انتظار کرنا پڑا. 1997 میں ہمیں وہ زمین جو ہے واپس ملی. اس میں جو کچھ مراحل آئے وہ بڑے تفصیل طلب ہیں. اس کے بعد جب ہمیں یہ زمین واپس ملی تو اس کی یعنی ٹائٹل کے لیے بھی ہمیں محتسب اعلیٰ کے پاس جانا پڑا, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ ٹائٹل ہمیں واضح طور پہ نہیں مل رہا تھا. لہٰذا ہم نے محتسب اعلیٰ کی عدالت میں اس کو پلیٹ کیا اور یوں ہمیں تقریباً کوئی 2005 میں محتسب اعلیٰ سے وہ زمین کا ٹائٹل وغیرہ جو ہے, جس کے اندر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اپنے جو لے آؤٹ پلان ہے اس کو جمع کرا سکیں اپروول کے لیے. اب جب ہم جمع کرانے گئے تو کیونکہ اتنا عرصہ ہو چکا تھا لہٰذا وہ ریٹ کا ایک مسئلہ آیا. ریٹ کو ریوائز کرنے کے لیے ہم نے پھر دوبارہ محتسب کو کہا کہ بھائی ہمیں اس زمانے میں 20 روپے کے حساب سے 20 روپے کے حساب سے لیا جا رہا تھا ہم سے جو آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز تھے. اب جب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے 50 روپے کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق تھا جو ہمیں برداشت کرنا ہے. ایک بات اور یہاں پر بتاتا چلوں خاص طور پہ کہ ہم جو ڈیل کر رہے تھے وہ کر رہے تھے کوآپریٹو سوسائٹی کے طور پہ. کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے بائی لاز کے مطابق رن کرتی ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ان بائی لاز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سارا کام انجام دینا تھا. اس کے لیے یہ تمام معاملات جو ہمیں پھر واپس وہاں سے جو فیصلہ ملتا ہے اور اس میں ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اپنے 20 روپے کے ہدف کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. پھر ہم جب چالان ایشو کرانے کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو اس میں بھی ہمیں 1.5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. اس 1.5 سال کے عرصے کے بعد ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے جمع کرا سکیں گورنمنٹ کے اندر. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پیسے جمع کرا رہے ہیں گورنمنٹ کو, گورنمنٹ سے لے نہیں رہے. تو اس سفر میں ہمیں تقریباً یہ سمجھ لیں آپ کے 1968 سے شروع کیا ہم نے اور 2007 کے اندر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم گورنمنٹ کو آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرا سکیں. یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ گورنمنٹ کی اپنی ہینڈرنس کی وجہ سے, ان کے قانون کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب ہم نے پیسے جمع کرا دیے اس کے بعد بھی ہمیں 6 مہینے انتظار کرنا پڑا این او سی کے لیے. این او سی ہمیں مل جاتا ہے 2007 کے اندر اور اس کے بعد ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے شروع کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کام شروع کرنے کے لیے سرگرم تھے کہ اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے کوئی تو اس کی مخالفت بھی ضرور ہوتی ہے. یہ ایک بڑا اہم بات ہے کہ ہم اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوئی بھی کام جو ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ وہ بہت آسان ہے اور بڑے سموتھ وے میں آپ کا ہو جائے گا وہ کام, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کے پاس مشکلات درپیش ہوتی ہیں. کچھ ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو कानून के दायरे में होते हुए आपको हल करनी होती हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात होती हैं जिसके लिए आपको कुछ और ज़राए भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हमारे साथ हर किस्म के मसाइल सामने आए और हम ये समझते हुए कि अगर हमने कोई काम करना है तो मसाइल तो सामने आएंगे। काम करने के लिए मसला जो है वो इसलिए आता है कि ताकि आपका काम जो है ज़्यादा पुख्ता हो जाए, और यूं ही हुआ हमारे साथ। जो जो हमारे सामने मसाइल आते गए और हम उनको अपनी साबित कदमी से दूर करते गए, हम अपने काम में और पुख्ता होते चले गए। अगर हम वहाँ पर किसी भी किस्म की कमज़ोरी दिखाते और इस काम को इतनी चाबुक दस्ती और तेज़ी से ना करते तो यकीनन हमारे मुखालफीन जो थे वह हमारे ऊपर हावी हो जाते और हम इस वक्त यहाँ ना पहुँच सकते। हमारे साथ तकरीबन इस वक्त मैं आपको इस हवाले से एक आदाद शुमार पेश कर दूं कि स्कीम 33, इसके अंदर इस वक्त 350 सोसाइटीज़ हैं। 350 सोसाइटीज़ में से सिर्फ 30% सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कुछ करने के काबिल हैं, बाकी 70% सोसाइटीज़ जो हैं इस किस्म के मामलात में हिम्मत हार बैठी हैं और वो अब आगे नहीं चल पा रही हैं। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये जाहिर है कि इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि इसके अंदर कमर्शियल लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने मफादात के तहत, लिहाजा ये कि आप किसी स्पिरिट के तहत जब काम कर रहे होते हैं तो ही आप कुछ कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज लोग जाहिर है कि आपसे बढ़ के भी हैं बहुत सारे। और ये हमारे साथ अल्लाह ताला का फजल करम है कि हमने अपनी यकसुई के साथ इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें यकीनन अगर परवरदिगार हमारी मदद ना करता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। ये अब हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ फिर इसके बाद भी एक बहुत बड़ा मसला आया। ये तमहीद जो मैंने बांधी उसकी वजह यही है कि जब हम इस काबिल हो गए कि हम अपनी सोसाइटी को डेवलप करा सकें तो फिर हमारे जो मुखालफीन थे जिन्होंने ये देखा कि अब तो ये कामयाब हो गए और अब तो किसी ना किसी तरह ये कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो उन्होंने दूसरे हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए। और हुआ ये कि हमें बाज़ दफ़ा लैंड ग्रेबर से भी पंजा आजमाई करनी पड़ी और वहाँ के जो दीगर मसाइल थे, जो लोग कब्ज़ा माफिया जिसे कहते हैं और जो स्कीम 33 का इस वक्त हाल है उसके हवाले से हमें बहुत कुछ वहाँ पर लोगों का सामना करना पड़ा। इस दौरान हुआ ये कि 2007 में ही दिसंबर में कुछ लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल मिला के हमारा जो लेआउट प्लान था उसको कैंसिल करवा दिया अपने असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए, और उन्होंने हमें ये कहा कि जी आपकी ज़मीन जो है वो क्योंकि बदले में है, लिहाजा कानून है कि जो ज़मीन बदले में मिलेगी उसका उस बदले के हिसाब से डिफरेंशियल मालकानों जो है वो बनता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी ज़मीन जो थी वो हमने जाती थी जो हमने एक ओनर से ख़रीदी थी, तो वो कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता था, लेकिन बहरहाल ब्यूरोक्रेसी है, उसके सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम उनके पास गए, अपना मुद्दा हमने उनको बताया, लेकिन बजाय इसके कि वो हमें रिलीज़ करते, उन्होंने हमारे इस मसले को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अदालत है उसके सुपुर्द कर दिया। इस अदालत का काम ज़्यादातर तो यही होता है कि लोगों से पैसे वसूल कर लिए जाएं, लेकिन ये शायद हमारा एक वाहिद केस था जिसके अंदर हमने उन्होंने हमें कहा कि आप 11 करोड़ रुपए डिफरेंशियल मालकानों की सूरत में आप अदा करें, लेकिन हमने वहां पर फाइट की और इस बात को तकरीबन ढाई साल लग गए। ढाई साल के अंदर हम वहाँ पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अपने जो ज़राए थे उनको इस्तेमाल किया हमने और हमने कोर्ट के अंदर उनके केस लड़ा और यूँ हम ढाई साल के बाद वहाँ से NOC लेने में दोबारा कामयाब हो गए। और जून 2010 में हम हर किस्म के मामलात से निपट चुके थे। उसके बाद से आज 2012 है और उस वक्त हमारे पास ज़मीन पे कुछ भी नहीं था। इस वक्त हमने वहाँ पर रोड डेवलप कर दिए हैं, पानी हमारी ज़मीन पे आ चुका है, सुई गैस हमारी ज़मीन पे आ चुकी है, चार दीवारी हमारी प्रोजेक्ट की बन चुकी है। तो ये समझ लें कि हम बहुत कुछ इस हवाले से कर चुके हैं। मेरा जो आप लोगों से मतलब दरख्वास्त होगी वो यही होगी कि कोशिश करें कि कोई भी काम मिल्लत के हवाले से इस नज़रिए से अगर हो सके तो अपनी आबादियों में भी छोटी छोटी बुनियादों के ऊपर अगर करना चाहें। और देखें जो मसाइल हम देखते हैं, हमने अपनी आबादियों में जहां शिया तशय्यो आबादियां हैं वहां पर हमने देखा है कि जो लोग काम करने आते हैं उनको किसी तरह से पीछे धकेल दिया जाता है और वो जो मुखलिस लोग होते हैं वो इस सिलसिले में फिर बड़े इत्मीनान से पीछे जाके घर पे बैठ भी जाते हैं और वो जो मफाद प्रस्त होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और फिर जो मसाइल होते हैं वो सबको भुगतने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई काम भी करने के लिए उठा जाए तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि बहुत आसान नहीं है कुछ भी, मुश्किलात तो आएंगी, फेस तो उसको करना पड़ेगा। और अगर आप सच्ची लगन के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। कोई ऐसा ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ बात ये होती है कि एक दूसरे से कोऑपरेट करने की बात है। हम जो कामयाब हुए उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारी टीम बड़ी अच्छी थी, हमने बहुत मिल के काम किया और रोजाना की बुनियाद पे हम एक दूसरे से अपडेट रहते थे। ये तकरीबन कोई 8-10 साल का अरसा है जिसके अंदर हमने मिल के एक दूसरे से इतने करीब रहे कि किसी दूसरे को इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी इस कोऑपरेशन को तोड़ सके। जब तक आपका कोऑपरेशन बरकरार रहेगा, जब तक आपकी विलिंग बरकरार रहेगी, इंशाल्लाह आप कामयाब हो ही जाएंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग जो है इस हवाले से अपने हौसलों को बुलंद रखें और जो इरादा किया है, जो हमारे जैदी साहब ने जो कुछ काम किया है इस वक्त, वो यकीनन एक ऐसा काम है कि इंतहाई मुश्किल है। और जो हमारा तजर्बा कहता है उसमें, हम तो खैर यहाँ पर हैं करीब में, ये 8 किलोमीटर का फासला है, अभी आगा साहब जहाँ पर हैं वहाँ तो अभी बहुत दूर का मसला है। तो इसलिए इसमें बड़े सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और मिल के किसी कोऑपरेशन को बरकरार रखते हुए अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं यहीं मौजूद हूँ।